और बढ़ती हुई जनसंख्या में भक्तों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, भक्तों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि भक्ति भी बढ़ती रहे पुरजोर से, और ज्ञान तो सभी नहीं उठावेंगे। हर धर्म की मुट्ठी भर थोड़ी सी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं जो ईश्वर के ज्ञान को उठावेंगी, धारण करेंगी और दूसरों को धारण करावेंगी और नई दुनिया में अपना हिस्सा लेंगी। सारी दुनिया ज्ञान को नहीं सुनने वाली है, न साकार बाप को पहचानने वाली है। दुनिया में ज्यादातर लोग तो वो ही रहेंगे जो अज्ञानी जैसी स्टेज के होंगे। हर धर्म में माला बनाई जाती है, माला सुमिरन करते हैं, परंतु माला में तो बहुत थोड़े होते हैं ना। बाकी तो सारी प्रजा ही प्रजा है ना। तो प्रजा कहो भक्त कहो, उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। ज्ञान परिपक्व अवस्था को अंदर ही अंदर पाता रहता है। ज्ञान की परिपक्व स्टेज को पाने वाली थोड़ी सी आत्माएं मुट्ठी भर संसार में पैदा होंगी, पनपेंगी, जिन्हें कहते हैं अष्टदेव, वो पार वाले की इकाई, नई दुनिया की संपन्न इकाई। जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक दुनिया में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे इनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी। जब वो एक पार वाले की इकाई तैयार हो जाएगी तो ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि 2036 तक भक्ति बढ़ती रहेगी, तब होगी ही नहीं। नहीं, जैसे पूरी होती है घी में डाली जाती है तो पहले नीचे रखी रहती है, जब तक पूरी पक न जाए तब तक नीचे ही पड़ी रहेगी। ऐसे ही ये ज्ञान का तौर तरीका है। ज्ञान परिपक्व स्टेज को नहीं पहुंचा है, ज्ञान लेने वाले बहुत निकल रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान को परिपक्व रूप से धारण करके प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले बहुत थोड़े हैं, जिनके द्वारा नई दुनिया तैयार होनी। और नई दुनिया का संगठन एक बार तैयार हो जाएगा परिपक्व स्टेज में तो भक्ति का पसारा कम होने लगेगा।
दूसरा प्रश्न ये होगा, क्या वो आने वाले समय में एक भक्ति एक ज्ञान ये टकराएंगे क्या?
अभी नहीं टकरा रहे, अभी कम टकरा रहे हैं, आंखें लाल लाल कर लेते हैं, मुंह चावल कर लेते हैं, बाल विवाद कर लेते हैं, कहीं कहीं यदा कदा कोई कोई मारपीट भी कर लेते हैं, कर रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी भी कर लेते हैं, लेकिन आगे चल करके गली गली में घर घर में ये लड़ाई झगड़े मारा मारी फैलती ही चली जाती। क्यों? क्योंकि पहले से ही बता दिया है विनाश ज्वाला कहाँ से निकली? इस रुद्र ज्ञान ये कि कुंड से ही निकली। घर घर में झगड़े हो जाते हैं, बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, सब संबंध टूटने लग पड़ेंगे या आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ेंगे।
कोई भी
हाँ?
कोई भी कार्यक्रम को अवरोधित पहले संकल्प करेगा। जम्बुद्वीप अर्थवर्ष अर्थकंडे के संकल्प होगा। जम्बुद्वीप दो मालूम हो गया काम हो रहा है। जम्बुद्वीप से अर्थवर्ष दूसरा चाहिए अर्थवर्ष
भारत खंडे जैसे और खंड है, अरब खंड है, चीन जापान खंड है बौद्धियों का, क्रिश्चियन खंड है यूरोप क्रिश्चियंस का, ऐसे ही भारतीयों का हिंदुओं का भारत खंड है। भारत खंडे वर्षे वर्षे कहो खंडे कहो हिंदुओं का स्पेशल खंड है। इतने हिंदू दुनिया के और किसी धर्म खंड में नहीं रहते जितने भारत खंडे देखने में आते।
नाव धुमाल कैसा चेंज होगा बस? नाव धुमाल है ना?
नाव
नाव
नाव ग्रह है। जैसे दुनिया टकराएगी तो नौ ग्रह भी आपस में टकराएंगे, इनका बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पृथ्वी पर जब एटम की विस्फोट होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। अब जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा तो और ग्रह उपग्रह का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा।
पावरफुल कौन सा है? प्रकृति पावरफुल है? नौ ग्रहों
पावरफुल, नौ ग्रहों में प्रकृति काम करती है। प्रकृति को कहते हैं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन पांच चीजों के संघात को प्रकृति कहा जाता है, कुदरत कहा जाता है, नेचर कहा जाता है। तो सभी धर्मखंड आपस में टकराएंगे, उनमें जो ज्यादा पावरफुल होगा वो स्थायी रहेगा, बाकी सब एक दूसरे को एक दूसरे में मर्ज करेंगे। जैसे चंद्रमा है उपग्रह कहा जाता है और पृथ्वी ग्रह कही जाती है। तो पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर काटती है या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है? चंद्रमा कम पावरफुल है और पृथ्वी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पावरफुल है। चंद्रमा में कम आकर्षण शक्ति है और पृथ्वी में ज्यादा आकर्षण शक्ति है। जब पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा तो चंद्रमा का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। ऐसे ही और भी ग्रह उपग्रह हैं जो एक दूसरे के आकर्षण से अभी रुके हुए हैं, जहां के कारण एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। जो छोटा है वो बड़े का चक्कर काट रहा है, सूर्य का साफ चक्कर काट रहे हैं। परंतु जब बैलेंस बिगड़ेगा तो साफ टकराएंगे। जो चैतन्य ग्रह है जिन्हें कहा जाता है नवरतन, रतन एक प्रकार के होते हैं या नौ प्रकार के? नौ प्रकार के होते हैं। एक होता है हीरा, सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर और रतन है, मूंगा, पन्ना, मोती, माणिक्य, एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, उन्हें कम वजन का कहा जाता है। तो ऐसे ही ये नौ चैतन्य ग्रह है जो अलग अलग धर्मों की मुखिया है, और सब धर्मों का विनाश होगा या नहीं होगा? एक सद्धर्म की स्थापना होगी या नहीं होगी? तो सब धर्मों का विनाश होगा, तो सब आपस में टकराएंगे। जब सब टकराएंगे तो उनके मुखिया आपस में नहीं टकराएंगे। जो उन ग्रहों के मुखिया है, उन धर्मों के मुखिया है, वो आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे। जो पावरफुल होगा वो बचेगा एक, बाकी सब खलास हो जाएंगे।
बाप है सूर्य, बाप है सूर्य,
सूर्य
माँ है चंद्रमा,
नहीं माँ पृथ्वी है, धरती माँ है।
वो माँ भी ब्रह्मा बाबा है, जगत माता है।
ब्रह्मा बाबा पृथ्वी का वो अच्छा और श्रेष्ठ हिस्सा है जहां से पृथ्वी प्रशांत महासागर कही जाती है। प्रमाण प्रकाश के रूप में शांत माने शांत, तो ऐसे पृथ्वी के हिस्से से निकलने वाला चंद्रमा शांत स्टेज वाला होगा या अशांत स्टेज वाला होगा? क्या होगा? शांति हो। जो जितना शांति स्टेज में रहने वाला होगा उतना ही सहन शक्ति वाला होगा। ऐसे पृथ्वी बहुत सहन शक्ति वाली मानी जाती है, लेकिन पृथ्वी में भी अलग अलग खंड हैं। तो प्रशांत महासागर से निकला हुआ जो हिस्सा है चंद्रमा, वो बहुत सहन शक्ति को धारण करने वाला है, इसलिए माँ का सर्वोपरि पाठ बजाया। इतना ऊंचा पाठ जगदम्बा ने भी नहीं बजाया, जो सारे जगत की माँ पृथ्वी कही जाती है। परंतु पावरफुल चंद्रमा है या पृथ्वी है, यह भी कि आज में कौन किसके कंट्रोल में रहा
है?
बाप का कंट्रोल में
है,
बाप का कंट्रोल में है।
तो बाप चला गया उसके पास,
माता कितना
अच्छा तो माँ कंट्रोल में है, कंट्रोल में रखा है चंद्रमा को। तो चंद्रमा पावरफुल नहीं है, हाँ उस चंद्रमा रूपी बच्चे को बेहद का बाप आकर के पावरफुल बनाते हैं। और
एक वाणी में बोला जगत माता का टाइटल धारी है ब्रह्मा बाबा।
जगत माता का टाइटल धारी है ब्रह्मा बाबा। प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल को उसकी ताकत दे दी जाती है। 2 साल की छुट्टी पे गया तो टाइटल उसको मिल गया। 2 साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। ऐसे ही टाइटल धारी है ब्रह्मा बाबा, असली नहीं है।
असली ज्ञान चंद्रमा जगत माता है।
ज्ञान चंद्रमा नहीं, उसको ज्ञान चंद्रमा नहीं कहेंगे।
ये खाली टाइटल धारी इसका बाबा।
हाँ, ब्रह्मा टाइटल धारी है, लेकिन वो टाइटल धारी को जन्म देने वाला कौन है? माँ। पुरुषार्थ अलग अलग है या एक जैसा पुरुषार्थ है? अगर एक जैसा पुरुषार्थ हो तो बताया जाए कि आत्मा की जब कब उतरती है। जैसा जैसा पुरुषार्थी आत्मा, वैसे वैसे जल्दी या देर से कट उतरेगी। कोई अभी भी बेसिक नॉलेज में से निकल रहे हैं तो क्या कहेंगे? उनकी कट उतर रही है, तब तो एडवांस में आ रही है। कोई ऐसे हैं जो अभी भी बेसिक में पड़े हुए हैं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो कहेंगे उनकी कट अभी तक देवान की कट उतरी नहीं है। तो कट उतरने का कोई फिक्स टाइम नहीं है।
हम्पी में एक टाइम जन्म लिया तो फिर कैसा वो था शरीर छोड़ने का चांस है क्या? हम्पी में बाप के पास एक टाइम जन्म लिया तो
हम्पी में बाप के पास एक टाइम जन्म लिया
तो
84 जन्मों में से एक जन्म, संगम युग में एक जन्म, संगम युग में पूरा 100 साल का संगम है। 100 साल के संगम में बाप कंपनी में ही रहता है क्या?
नहीं, नहीं। तो वो शरीर छोड़ने का चांस नहीं किया
है,
शरीर छोड़ने का चांस नहीं किया।
नहीं, एक बार फटे करके बाबा के बच्चे बनने के बाद शरीर छोड़ने
कंपनी की बात खत्म हो गई ना उसमें?
कहीं भी कंपनी में तो बड्डे चल रहे हैं ना, इसलिए वहाँ बच्चा बनने के बाद मरने का चांस है क्या पूछ रहा?
मर नहीं रहे, कितने ढेर के ढेर मर रहे हैं। कोई नया झाड़ तैयार होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं, नए पत्ते निकलते जाते हैं। वैसे ही एडवांस का झाड़ है, इसमें भी ढेर के ढेर पुराने पत्ते निकलते जा रहे हैं और नए पत्ते ऐड होते जा रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो एक बार एडवांस में आ गया, भले अनिश्चय बुद्धि हो जाए, टूट जाए, चला जाए, दोबारा उसे फिर यहाँ आना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
माया चैतन्य में क्या है करके पूछ रहा था।
माया के ऐसे तो अनेक रूप है, माया बेटा नहीं कहा, क्या कहा? माया बेटी कहा। इसका मतलब बाबा की जितनी भी बच्चे हैं वो सब एक दूसरे के लिए मायावी रूप पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं? वो सब माया के रूप है, परंतु माया के मुख्य रूप दो हैं, एक आधार रूप और एक बीज रूप। आधार कहते हैं जड़ को, सच्ची मनुष्य सच्ची रूपी वृक्ष में जो इस्लाम धर्म की जड़ है उसकी मुखिया वो है आधार मूल, और उसको भी जन्म देने वाला है कोई बीज जो एडवांस पार्टी में मौजूद है, वो है बीज। तो माया के दो रूप हो गए खास, एक बीज रूप और एक आधार रूप।
शूटिंग में आदि मध्य अंत दुख क्या है? आदि मध्य अंत दुख क्या है?
सुख दुख जब से ज्ञान में आते हैं, बाप को पहचानते, चाहे बेसिकली पहचानते हैं और चाहे एडवांस में पहचानते हैं, आज में आते हैं तो बहुत खुशी बढ़ जाती है, उसे सुख स्वरूप कहे या दुख स्वरूप कहे, वो हुआ सुख हमारा सत्य गोत्रिता। फिर जैसे जैसे औरों के संग के रंग में आते जाते हैं, संग का रंग तो लगता है ना, नहीं तो बाप को पहचान लिया कि बाप से ही हमारे सब संबंध है, बाप ही हमारा सब कुछ है, बाप से ही हमें सब कुछ लेना देना है, और दुनिया में कोई से किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, सब दुखदायी है। तो एक बाप से ही संबंध प्रैक्टिकल में होना चाहिए और कोई से संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया दो तरह की है, एक भगवान की बनाई हुई दुनिया अद्वैत, जहां सिर्फ एक आत्मा का ही प्रभाव रहता है, और दूसरी है द्वैत, दो दो का प्रभाव हो जाता है। द्वैतवादी दुनिया से बनता है द्वापर, दो दो के प्रभाव में आने लगते हैं। तो ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी पहले पहले सतो प्रधान स्टेज रहती है, सतो सामान्य स्टेज रहती है, दूसरों का असर नहीं रहता, हम बाप के नशे में रहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। फिर क्या होता है, कहीं न कहीं देह के संग का रंग लग ही जाता है, उसमें भी मुख्य है आंखें, फिर और इंद्रियां, जैसे जैसे देहधारियों का संग का रंग अटैचमेंट में लाता जाता है, वैसे वैसे द्वैत बात बढ़ता है और दुख भी बढ़ जाता है। पहले सतो प्रधान दुख होता है, बाद में सतो प्रधान से बदल के नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान दुख बन जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी ऐसे हो रहा है, बेसिक में भी हो रहा है, एडवांस में भी हो रहा है। जो नई नई आत्माएं निकल रही है उनकी भी पहले सतो प्रधान सूची होती है। हाँ, कोई की लंबे समय तक रहती है, कोई की कम समय तक रहती है। उदाहरण के तौर पर सती व त्रेता में जो भी आत्माएं दूसरे धर्म की आती है, सती व त्रेता में सुख भोगती है, उनमें कोई ऐसी आत्माएं भी तो है जो द्वापर शुरू होता है और द्वापर के आज से ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कौन है वो? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म वालों में भी पहले नंबर किसका है? उनमें भी कोई पहला दूसरा नंबर होगा ना। कौन है? माया रावण। ऊपर से जो इब्राहिम उतरता है वो सतो प्रधान आता है या तम प्रधान आता है? सतो प्रधान आता है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं। फिर कमजोरी शुरू कहां से होती है? वो जिसमें प्रवेश करता है वहां से कमजोरी द्वैत बात शुरू हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। कोई आत्माएं आर से ही नीचे गिरने लग पड़ती है। द्वैतवाद शुरू हुआ, द्वैतवादी का आदि हुआ और नीचे गिरना तेजी से शुरू। कुछ ऐसी होती है भले द्वापर ही शुरू हो जाता है तो भी इस्लामियों को धक्के मार के बाहर निकाल देते, संघर्ष करके और अपने धर्म पर काबिज रहती है। उनके देह के धर्म से प्रभावित नहीं होती। इसलिए बुढ़ियों ने बोला है, तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके। कोई फिर बीच में कन्वर्ट होते रहते, कोई अंत तक भी कन्वर्ट नहीं होते और धर्मों से टक्कर लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। बाकी अंत में तो सबको जाके तो मुकदम करते। तो जो अपने धर्म के पक्के से पक्के होते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में तने में ही जन्म लेते रहते हैं, वो भी अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। उनको भी अति दुख मिलता है। तो ये सबका हिसाब अपना अपना अलग अलग है। संघ के रंग में आने की बलिहारी है।
जगत माता है ना
जी,
माया पांच विधा है ना
जी,
ये दो की क्या कनेक्शन है?
जो माया है वो शुरुआत से ही बच्चों की दुश्मन है। माया भल दुश्मन हो कितनी भी कड़ी, परंतु जब बाप मिल जाते हैं तो माया की लड़ाई में जो सच्चे बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, वो कभी भी हार नहीं खाते। परंतु ये दोनों बहनें हैं, कौन कौन? माया
जगत माता
और प्रकृति जगत माता। क्योंकि जगत माता है तो सब धर्मों की माता है ना। इससे तो भारत माता है, सब धर्मों की माता है, सब धर्मों की स्वभाव संस्कार उसमें भरे हुए हैं। तो माया अकेली विरोधी बनती है तो बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाप के बच्चे अक्षुण्ण रहते हैं, लेकिन जब माया थक जाती है लड़ते लड़ते बच्चों से, हार जाती है, तंग हो जाती है, तो बताया माया के दो रूप है। कौन से दो रूप? एक आधार रूप और एक बीज रूप। तो पहले कौन तंग होगा? आधार रूप। तो पहले कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तंग हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, हिम्मत हार जाता है। तो वो आधार मूर्त जो माया है वो हाथ मिला लेती है। उनको ये ऐसे शत्रु होते हैं ना कि हार तो जाते हैं लेकिन हारने के बाद जिससे लड़ाई लड़ते हैं उसके शत्रु से हाथ मिला लेते हैं। ऐसे होता ही नहीं अपने को पावरफुल बनाने के लिए। तो ऐसे ही माया करती, माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है। जब प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो हम दो हो गए इकट्ठे, एक और एक मिलकर के कितने हो जाते हैं? दो नहीं हो जाते, ग्यारह हो जाते हैं। कई गुनी ताकत बढ़ जाती है। तो माया और प्रकृति दोनों मिलकर के हाथ मिला लिया तो एक हो गए। अब बच्चे जो है जिनको टाइटल मिलता है बाप का, बाप का भी तो टाइटल है मायापति प्रकृतिपति। तो बच्चे नंबर वन माया के ऊपर कंट्रोल करने वाले बनते हैं या नहीं बनते, और प्रकृतिपति भी बनते हैं या नहीं बनते है? बनते हैं, लेकिन बनने से पहले माया प्रकृति से हाथ मिला करके फाइनल पेपर लेती है और उस फाइनल पेपर में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देती है। वो काम अभी होने वाला है, नहीं तो माला के मड़के नंबर वार डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे। ये नंबर डिक्लेयर करने के लिए माया और प्रकृति का ये खेल जरूरी है। माया और प्रकृति दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? माया कहाँ पावरफुल है? माया पावरफुल होती तो हमको हरा देती। माया ने बाप के बच्चों को हरा पाया अभी तक पूरा है? हरा पाया नहीं? हरा पाया नहीं? हरा पाया, इसलिए तो माया ने हाथ मिलाया इससे प्रकृति से। अब ताकत कई गुनी हो गई। प्रकृति जो है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पांचों के संघात को प्रकृति कहा जाता है। दुनिया का विनाश माया के हाथ नहीं होता है, काहे के हाथ होता है? प्रकृति दुनिया का विनाश करती है। आज वैज्ञानिकों ने भले प्रकृति के पांच तत्वों को बहुत कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया है, लेकिन क्या फिर भी ये कहें कि 100% जीत पाई है, नहीं पाई। 100% अगर जीत पाई होती तो पृथ्वी का एक थोड़ा सा हिस्सा है बरमूडा ट्रायंगल, वहां से बचकर भी क्यों निकल जाते हैं इधर से, इधर से। बच के निकल जाते हैं इसका मतलब प्रकृति के ऊपर उनकी पूरी विजय नहीं है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है, अति तामसी बनती है, तो सारी पृथ्वी डोलने लगती है, और पृथ्वी के डोलने से सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराने लगते हैं। इतना विकराल रूप धारण करती है। भूडोल आवेंगे, भूकंप आवेंगे, तो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जो आज मल्टी स्टोरीज के मकान बने हुए हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी तादाद के लोग उसमें रहे पड़े हैं, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी, तो दुनिया का बड़ा विनाश काय से होगा, भूकंप से हो जाए। प्रकृति पति का यहां तक भी विरोध करेगी, माया का सहयोग नहीं करती। फिर भी आगे बच्चों की विजय होगी और माया की हार हो जाएगी। दुनिया में राजाई सबकी सफा चट्ट हो गई या किसी की रह गई है? दुनिया में सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई ऐसा राजा है जिसकी राजाई बच गई हो, खलास न हुई हो? कोई है? है कोई नहीं? अब तो सारी पृथ्वी पर सभी धर्मखंडों में सभी देशों में प्रजा के ऊपर प्रजा पर एक नेपाल बचा था दुनिया में, नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल। इसकी राजाई ऊंचे पहाड़ों पर है, सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला, उसकी भी हालत अभी क्या हो गई है? किसका राज्य हो गया है? नहीं, प्रजा में भी किसका राज्य हो गया? माओवादी, ओ अम्मावादी, माओवादियों का राज्य हो गया, और वो माओवादी सिर्फ नेपाल में ही अभी सीमित नहीं है, हिंदुस्तान में भी उन्होंने अपनी जड़ें जमा दी है, यहां भी आकर के नक्सलवादियों की तरह मार काट करते रहते हैं। समाधान हो गया?
इतना बंद है ये गणेश का मंदिर में दो शिवलिंग रहती है बाबा।
हैदराबाद में गणेश के मंदिर में दो शिवलिंग
है वहाँ पर ये कुछ नीचे ये शिवलिंग क्या
तो
अरे
अरे गणेश किसका बच्चा है?
शिव का बच्चा।
शिव का बच्चा नहीं है, शिव ने कभी पैदा भी नहीं किया।
शंकर का बच्चा।
गणेश तो जानवर यज्ञ वाला देवता है, जानवर का मोड़ा दिखाया गया है। उसका बच्चा है, है? अम्मा का बच्चा,
पार्वती।
अम्मा का बच्चा माने ब्रह्मा का बच्चा। उसका बच्चा
ब्रह्मा का बच्चा।
ब्रह्मा का बच्चा। ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करता है कि नहीं?
करता
है। उसमें भी शिव प्रवेश करता है और आखिरी अभी भी ब्रह्मा की आत्मा बीज रूपी स्टेज में शिवलिंग बनती है या नहीं बनती है? अरे बनती है। आखिरी संपन्न बन जाएगी, बाप समान बन जाएगी। तो एक तो शिवलिंग वो हो गया और दूसरा तो बाप है ही है, तो दो शिवलिंग अगर दिखाए हैं तो क्या खराब बात होगी?
दुनिया वाले 2012 में हम युगांत होने वाला है।
क्या होने वाला है?
कल्पांत होने वाला है।
कल्प का अंत होने वाला है, माने 2036 में कल्प का अंत नहीं होगा। 2036 में दुनिया का अंत नहीं होगा, पुरानी दुनिया का। कब होगा? 2012 में। दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले तो 2000 के लिए भी कहते थे, चलो अब 2012 के लिए कह रहे हैं। हाँ, फिर
ब्राह्मण दुनिया में कैसे लाभ होती?
ब्राह्मण दुनिया में कैसे लाभ होती? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बात हो गई? ब्राह्मणों की दुनिया में तो स्पष्ट बात है कि 1998 में विघटन हुआ एडवांस पार्टी का। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कब हुआ विघटन? विघटन माने तोड़फोड़। कब हुई है एडवांस ब्राह्मणों की जो दुनिया एक जगह से संचालन हो रही थी, धर्म सत्ता राज सत्ता एक जगह से संचालित थी, वो विघटित हो गई और अलग 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 जगह स्थापन हो गया। वो कब हुआ? 1998 में ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया का विघटन हो गया, तोड़फोड़ हो गई, पांडवों को निर्वासित तो होना पड़ा, इतने साल के लिए 12 नहीं 13 साल, और रामायण में कितने साल के लिए है? 14 साल। तो 98 से 13-14 साल ऐड कर लो, 2012 में वो कहते हैं पृथ्वी डावाडोल हो जाएगी, माया सभ्यता वाले जो माया सभ्यता को मानते हैं कैसे निकली है ना सीढ़ी, वो दिखाते हैं चारों तरफ कि 2012 में ऐसा हो जाए। वास्तव में 2012 में ये स्थूल पृथ्वी का इतना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, छोटा मोटा तो होता ही रहता है, भूकंप हलचल होती ही रहती है, इतना जरूर है कि 1998 में वो एडवांस पार्टी की धरणी हिल गई। कौन? जगदम्बा। उसकी धुरी चेंज हो जाएगी 2012 में, ये हो सकता है। धुरी चेंज हो जाएगी माने चैतन्य पृथ्वी माता में, जगत माता में परिवर्तन आएगा या स्थूल पृथ्वी में परिवर्तन हो जाएगा।
हाँ,
चैतन्य पृथ्वी माता है, उसकी धुरी चेंज हो सकती है। बाकी 500-700 करोड़ पॉपुलेशन वाली ये पृथ्वी, जड़ पृथ्वी, ये डावाडोल हो जाए, इसकी धुरी चेंज हो जाए, ये होने वाला नहीं है। तमिल है? अच्छा तमिल में बोल दो, तमिल जानता होगा।
पांच तत्व है ना, वो धरणी गर्भ बोला ना सर।
नहीं नहीं, पांचों तत्व अलग अलग है, लेकिन हरेक तत्व में कुछ न कुछ दूसरा तत्व समावेश होता है। जैसे एक मुट्ठी मिट्टी ली, ये पृथ्वी का अंश है, एक मुट्ठी मिट्टी में इसमें हवा भी भरी हुई है, इसमें कुछ न कुछ पानी भी है, इसमें कुछ न कुछ आकाश भी है, और इसमें कुछ न कुछ अग्नि का भी अंश है।
वो माता जी,
तो ऐसे ही जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में बाकी चारों तत्वों का समावेश सबसे जाती है। हाँ, क्या पूछ रहे
हो? माता जी पूछ रहा, वायु है ब्रह्मा, जल कौन है गर्भ पूछता?
चलो माता है, चलो वायु, अग्नि कौन है? वायु तो ब्रह्मा है, और दो कौन है?
जो पांच देवताएं कहे गए हैं पृथ्वी के साथ, जल वायु अग्नि आकाश, ये पांचों देवताएं एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में है। ज्ञान जल का सबसे ज्यादा पार्ट कौन बजाता है? अरे अष्टदेवों में पांच देवताओं का नाम है या नहीं है? जब पांच देवताओं का नाम है तो वो पांच चैतन्य आत्माएं भी जरूर है। इसमें जल का देवता कौन है?
वरुण।
सब जानते हैं कि वरुण है। अग्नि का देवता भी है, अग्नि कौन कहा जाता है? वायु देवता भी है, वायु देवता माने पवन देवता, हनुमान किसका पुत्र है? पवन पुत्र है।
आकाश तो बाप हो गया, ब्रह्म हो गई, वायु ब्रह्मा हो गया, और बाकी अग्नि और जल कौन है ये प्रश्न है माता
जी। वरुण बता दिया ना, माने क्या पारण दिव्या करना है। बाबा ने कहा है कि बाप दादा कोई का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नाम पता नहीं बता देंगे। हरेक आत्मा अपनी चरण से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने पार्ट से, अपने स्वभाव संस्कार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। अगर पृथ्वी का भी पार्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसके अपने पार्ट के आधार पर डिक्लेयर हुआ है या बावन बता दिया है? पृथ्वी है, प्रकृति है, जगदम्बा है, उसने अपना ऐसा पार्ट बजाया तब पार्ट प्रत्यक्ष हुआ या सिर्फ बाप ने बता दिया है इसलिए प्रत्यक्ष हो गया है? क्या हुआ? अपना पार्ट बजाया तो प्रत्यक्ष हुआ। बाप एक एक कदर की किसका किसका बताएगी? 33 करोड़ देवताओं का पार्ट पर जिक्र करेंगे।
भाई साहब पूछ करके भाई साहब उत्तर भारत में नदियों का संगम करता है कुंभ मेला, कुंभ मेला कहते हैं नदियों का। इधर दक्षिण भारत में ये इधर नदियों का पुष्करणी करता है,
पुष्करणी
12
साल में एक बार लगता है ना।
पुष्कर तो वो स्थान है जो ब्रह्मा का तीर्थ स्थान माना जाता है। अंतर ये है, पुष्क कहा जाता है धक्का देने को, करणी माने करने वाला, जो पुरुषार्थ धक्का देकर के कराया जाए करे उसको कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। ब्रह्मा और उनको फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस समय जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा का, उनको कोई धक्का लगा रहा है तब कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं? एडवांस पार्टी निकल पड़ी, एडवांस पार्टी सच्ची बात सुना रही है और वो सच्चा ज्ञान इस तेजी से फैल रहा है बिना किसी एडवर्टाइज किए कि उनको भय पैदा हो गया कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे उछल कूद के तो हमारा डब्बा गोल होने वाला है। इसलिए एडवांस पार्टी की ओर से एक तरह से धक्का लग रहा है उनको और वो सेवा कर रहे हैं। ये ब्रह्मा के फॉलोअर है या नहीं है? ब्रह्मा के फॉलोअर है और ब्रह्मा के पालो करने वाले मोस्टली असुर हैं या देवता हैं? असुर हैं। और असुर जो है वो भारतवर्ष में उत्तर भारत में माने जाते हैं या दक्षिण भारत को भारत का भी देश कहा है? दक्षिण भारत को भारत का भी देश कहा है। तो यहाँ वो मेला लगाया हुआ है, उसका नाम दिया है पुष्करणी मेला।
हाँ। जैसे अष्टदेव है बाप तिरसठ जन्मों में और धर्म में राज्य स्थापित करने जाते हैं उनके साथ अष्टोदय के जाते हैं। और प्रश्न ये है, 108 की माला के जो ग्रुप हेड्स है, अष्टरतन नवरतन है, वो भी राज्य स्थापना में जाएंगे और उनके ग्रुप वाले 11-11 है वो भी जाएंगे क्या? ये प्रश्न
किसके साथ जाएंगे?
अष्टदेव तो
बाप के
साथ जाएंगे।
अष्टदेव तो ऐसे हैं जो हर धर्म की राजाई की जो स्थापना होगी उस राजाई की स्थापना में वो अष्टदेव जाएंगे ही जाएंगे, बाप के सहयोगी बनेंगे ही बनेंगे। हर धर्म के राज्य की फाउंडेशन डालने में उनका सहयोग होगा। लेकिन और जो धर्म के मुखिया है और फॉलोअर्स है, उनकी राजाई की जब स्थापना का फाउंडेशन पड़ेगा तो सिर्फ वो ही सहयोगी बनेंगे,
उनके राजा अलग
वो ही सहयोगी बनेंगे और अष्टदेव भी सहयोगी बनेंगे, दूसरे धर्म वाले सहयोगी नहीं बनेंगे। नहीं समझ में आया?
हर शहर में ज्योतिर्लिंग का प्रदर्शन कर रहा है बाबा, हर शहर में कर रहा
है,
इसलिए
तो लिंग किसे कहा जाता है?
बारह
ज्योतिर्लिंग। अरे लिंग किसे कहा जाता है? वो बारह ज्योतिर्लिंगों की प्रदक्षिण कर रहे हैं, बारह ज्योतिर्लिंगों की। तो अभी अष्टदेव और अष्टदेव के साथ जो नष्टदेव है वो प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है क्या? अभी अभी तो कहा जितना ज्ञान मार्ग बढ़ता जाता है उतना ही भक्ति मार्ग भी बढ़ता जाता है। यहाँ चैतन्य बारह लिंग प्रत्यक्ष होते हैं और भक्ति मार्ग वाले किसे प्रत्यक्ष करते हैं? जड़लिंगों को प्रत्यक्ष करते हैं बारह को। वो बेसिक में है भक्ति मार्ग और एडवांस में है ज्ञान मार्ग। अब ये अटकलें ही तो लगाई जा रही प्रत्यक्षता की कि वरुण देवता कौन है, ये प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, दिमाग नहीं लग रहा है। एडवांस में विचार सागर बंधन के आधार पर प्रत्यक्षता हो रही है और बेसिक में भक्ति मार्ग की अनुसंधा के आधार पर। एडवांस की शुरुआत में भी ऐसे ही हुआ था, सन 78 में बेसिक वालों ने दिल्ली के चारों कोनों में चार बड़े बड़े शिवलिंगों की वो झांकी निकाली, बड़े बड़े शिवलिंग बनाए ज्योतिर्लिंग, और 78 में ही एडवांस पार्टी के वो चार और दिग्गज प्रत्यक्ष हो गए। इनके द्वारा एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पड़ गया, नगाड़े छप गए, जिन नगाड़ों में चारों पांचों पुराने चित्रों का क्लेरिफिकेशन डिक्लेयर हो गया। लेकिन वो उस समय दिल्ली दिल्ली में हुआ था, अभी भारत के सभी बड़े बड़े शहरों में वो स्कूल में भी प्रत्यक्षता हो रही है और एडवांस पार्टी के द्वारा उन चैतन्य आत्माओं की भी प्रत्यक्षता में बुद्धियां लगी हुई है। Yeah.